हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वेल, परी लोग जाने के बारे में सोचते हुए कुछ आंसू उसके गालों पर आ गए थे, और जैसे ही अमन ने तारा की आंखों में आंसू देखे, वो बेचैन हो उठा था। तारा की आंखों में आंसू देखने के बाद अमन जल्दी से उसके पास गया था, उसके आंसू पोंछते हुए बोला था, क्या हुआ है मेरी खूबसूरत बीवी को, इस तरह से क्यों रो रही हो? किसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है? तुम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तारा की बात सुनकर अमन भी मुस्कुराने लगा था। तभी करिश्मा जी कहने लगी थीं, अमन बेटा, मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? करिश्मा जी की बात सुनकर अमन और तारा दोनों ही हैरान हो गए थे। तभी तारा ने बड़े ही प्यार से पूछा था, लेकिन मॉम, आपको कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आखिर आपको हो क्या रहा है? तभी करिश्मा जी अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखते हुए जोर से चीखी थीं, नहीं नहीं। जैसे ही तारा और अमन ने करिश्मा जी की ऐसी हालत देखी, वे दोनों बुरी तरह से परेशान हो गए थे और जल्दी से करिश्मा जी के पास पहुंचे थे। उनके हाथों को हटाकर उनसे पूछने लगे थे, क्या हुआ है मॉम, आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हैं? क्या हुआ है आपको? आखिर क्या सुनाई दे रहा है जो हमें सुनाई नहीं दे रहा है? तभी अचानक बदहवासी हालत में करिश्मा जी ने कहना शुरू कर दिया था, अमन, तेरे पिताजी, हमें तेरे पिताजी यही हैं, वो मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, वो रो रहे हैं अमन, वो रो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दर्द में हैं अमन, मेरी बात मान, जल्दी से ढूंढ अपने पिता को, तेरे पिता बहुत ज़्यादा दर्द में हैं अमन, ढूंढ कर लाओ उन्हें, कहाँ है वो, ढूंढ, जल्दी ढूंढ। करिश्मा जी की इतनी बुरी तरह से बेचैनी देखकर तारा की आंखों में आंसू आ गए थे, और तारा परी सोचने लगी थी कि आखिरकार ऐसी कौन सी आवाज़ थी जो उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन करिश्मा जी को बड़ी ही साफ साफ सुनाई दे रही थी। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए तारा ने जल्दी ही अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था। वो इस आवाज़ की सच्चाई के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि करिश्मा जी की इतनी बुरी हालत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और तभी अमन करिश्मा जी को शांत करते हुए बोला था, रिलैक्स, शांत हो जाइए मॉम, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पिताजी को लेने के लिए ही आया हूँ और पिताजी को लेकर ही जाऊँगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तभी अचानक तारा ने अपने आसपास अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था, और जल्द ही तारा की नज़रें अगर किसी पर जाकर ठहर रही थीं तो वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा था। विक्रांत की आंखों का अजीब सा रंग तारा को काफी ज्यादा बेचैन कर रहा था। वहां अचानक से तारा के दिलो दिमाग में एक अलग ही तरह की बिजली सी कूंद गई थी, और उसे समझ में आ चुका था कि असल में ये विक्रांत रंधावा कौन है। और इससे पहले कि वो अमन या करिश्मा जी को इसके बारे में कुछ भी बता पाती, विक्रांत रंधावा अचानक जोरों से हंसने लगा था। विक्रांत को इस तरह से हंसते हुए देखकर तारा परी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो उसकी ओर देखने लगी थी। वहीं अमन विक्रांत को इस तरह से हंसता हुआ देखकर बोला था, क्या हुआ है तुम्हें, इस तरह से क्यों हंस रहे हो, तुम क्या मतलब समझूं इस बात का? तभी विक्रांत हंसते हंसते बोला था, जिन महाराज, अमन, 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 क्या हुआ, चौंक गया तू, अपने पिता से इस जन्म में कभी नहीं मिल पाएगा, अगर तुझे अपने पिताजी चाहिए तो तुझे तारा पे मेरे हवाले करना होगा, क्या, या, जैसे ही विक्रांत ने ये कहा, अमन की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई थीं, और वो गुस्से से विक्रांत की ओर देखते हुए बोला था, विक्रांत, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तभी अचानक तारा को विक्रांत के अंदर एक बार फिर राक्षस के अंश के होने का एहसास होने लगा था, और वो जल्दी से अमन का हाथ पकड़कर बोली थी, वह अमन, सर, जरूर कुछ गड़बड़ है, आपको याद है मगरमच्छ वाली गुफा के अंदर हम लोग ही गए थे, लेकिन विक्रांत बाहर ही था, तभी उसने जरूर कुछ ना कुछ किया है, जरूर पिताजी इसके कब्जे में हैं। जैसे ही तारा ने ये कहा, तब विक्रांत खिलखिलाकर हंसते हुए तारा की ओर देखते हुए बोला था, अरे वाह मेरी प्यारी तारा, तुम कितनी ज्यादा समझदार हो, सब जानती हो, बिल्कुल तारा, बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारा पिताजी इस वक्त मेरे कब्जे में है, जिस वक्त तुम मगरमच्छ के अंदर गए थे उसी वक्त उस हिडिम्बा के साथ साथ तुम्हारे पिता को भी मैंने अपने कब्जे में ले लिया था, तुम्हें क्या लगा तुम राक्षस के अंश को इतनी आसानी से हरा दोगे? नहीं नहीं अमन, नहीं, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, राक्षस अंश इंसानी जिस्म के साथ मिला हुआ था, तो उसके अंदर इंसान किस तरह से धोखा देते हैं ये फितरत भी आ गई थी। और इस फितरत का लाभ उठाते हुए मैंने बात का फायदा उठाया था जब तुम लोग मगरमच्छ वाली गुफा के अंदर गए थे। और हाँ, अब तुम मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो। मुझे बार बार अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात एक ही बार में समझ लेनी होगी, समझे? तुम अमन सिंह राठौर, और अगर अब तुम्हें तुम्हारे पिताजी चाहिए तो तुम्हें तारा को मुझे देना होगा। क्या? या? जैसे ही अमन, तारा, करिश्मा जी ने ये सुना, वो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। तभी तारा परी ने अपनी आंखें बंद की थीं और सोचने लगी थी, आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे? तभी उसे याद आया था, जिस वक्त वो मगरमच्छ के मुंह में बंद हो रहे थे, ठीक उसी वक्त उसने विक्रांत का चेहरा देखा था, जिस पर उसे मक्कारिता साफ दिखाई दी थी। तब तारा परी को समझ आने लगा था, विक्रांत ने सब कुछ कैसे किया होगा। जैसे ही वो लोग मगरमच्छ वाली गुफा के अंदर गए, ठीक उसी वक्त विक्रांत ने आगे बढ़कर हिडिम्बा से युद्ध करना शुरू कर दिया था। विक्रांत की शक्तियों के आगे हिडिम्बा कुछ ही पल टिक पाई थी, उसके बाद वो ढेर हो चुकी थी। तब विक्रांत ने उसी वक्त हिडिम्बा के कब्जे से अमन के पिता को छुड़ा लिया था और अपने कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, उसने राक्षसी हिडिम्बा को भी अपने कब्जे में ले लिया था, ताकि न जाने कब उसे उसकी शक्तियों की जरूरत पड़ जाए। और फिर जैसे ही तारा, करिश्मा और अमन मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकले, तब वो एक सही मौके की तलाश में था अपना असली रंग दिखाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि विक्रांत कुछ कर पाता, ठीक उसी वक्त करिश्मा जी के कानों में अमन के पिताजी की आवाज़ आने लगी थी, जिससे उन्हें एहसास हो चुका था कि अमन के पिताजी उसके कहीं आसपास हैं। और अब विक्रांत को अपना राज खोलना ही था, क्योंकि वो समझ चुका था, अगर उसने अमन के पिताजी का राज नहीं खोला और ये बात नहीं बोली कि अमन के पिताजी इस वक्त उसके कब्जे में हैं, तो करिश्मा जी को जो अमन के पिताजी की आवाज़ आने का एहसास हो रहा था, उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो अपने आप ही विक्रांत के करीब पहुँचने ही वाले थे। इसीलिए विक्रांत ने देरी न करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया था कि उसके पिताजी विक्रांत यानी कि राक्षस के अंश के पास हैं। वहीं तारा समझ चुकी थी कि भले ही अमन की शक्तियों के द्वारा राक्षस का अंश विक्रांत के जिस्म में से निकल गया था, लेकिन कुछ पल के लिए ही। अगले ही पल एक बार फिर राक्षस का अंश ने विक्रांत रंधावा को अपने कब्जे में कर लिया था। इतनी जल्दी वो हार नहीं मान सकता था, और इसीलिए वो सही मौके की तलाश में था कि उसे कब ऐसा मौका मिले जब वो अमन को मजबूर कर सके और तारा को अपने साथ ले जा सके। और उसे अब मौका मिल चुका था। उसने अमन के पिता को अपने कब्जे में कर लिया था और सीधा सीधा अमन, तारा और करिश्मा जी के सामने शर्त रखती थी कि या तो वो तारा को विक्रांत रंधावा को दे दे, या फिर वो अमन के पिताजी की जान ले लेगा।
करिश्मा जी अब कश्मकश में पड़ चुकी थीं। वो समझ चुकी थीं कि एक तरफ तो उनकी प्यारी बहू थी और दूसरी तरफ उनके मांग का सिंदूर यानी कि उनका सुहाग अमन के पिता थे, जिन्हें वो बरसों से ढूंढ रही थीं। और आज अब उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा आन पड़ी थी। वहीं अमन का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। और वो गुस्से से विक्रांत की ओर देखते हुए बोला था, अपनी हद में रहे विक्रांत, तू जानता भी है क्या कह रहा है? छोड़ दे मेरे पिताजी को, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता है। अच्छा, तू भूल रहा है, अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी जान चुटकियों में ले भी सकता हूँ। और तू अच्छी तरह से, तुझे मेरी शक्तियों का अंदाज़ा है, तो मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, मेरे पिताजी को सही सलामत छोड़ दे और मेरी बीवी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। और वैसे भी मेरी बीवी के बारे में सोचकर तूने अपनी मौत के कागजों पर दस्तखत कर ही दिए हैं। अमन की बात सुनकर विक्रांत तो जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, बीवी? तेरी बीवी? तो जानता भी है कौन है ये? जैसे ही विक्रांत ने ये कहा, तारा हैरान हो गई थी और कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि जरूर अब विक्रांत तारा की सच्चाई अमन को बता देगा। लेकिन तारा अपनी सच्चाई किसी भी कीमत पर अमन के सामने नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि तारा को अपना मकसद पूरा करने के बाद जल्द से जल्द यहाँ से पृथ्वी लोक से परीलोक लौटना था। और तब तक वो अपनी सच्चाई अमन के सामने नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि अगर उसकी सच्चाई अमन के सामने आ गई तो अमन कभी भी उसे पृथ्वी लोक से जाने नहीं देगा। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। तभी इससे पहले कि विक्रांत आगे कुछ बोलता, तभी तारा बोल पड़ी थी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें उससे पहले पिताजी को छोड़ना होगा। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन और करिश्मा हैरानी से उसकी ओर देखने लगे थे और तभी अमन जल्दी से बोला था, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर होने के बारे में सोचने की भी। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा अमन को हैरानी से देखने लगी थी। तारा ने अमन की आंखों में अपने लिए जुनून साफ साफ देखा था। तभी तारा ने अमन को समझाते हुए कहा था, मेरी बात ध्यान से सुनिए अमन सर, अब इस वक्त हमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कितने सालों से मॉम पिताजी के लिए परेशान हैं, और अगर हमें आज पिताजी मिल रहे हैं तो हमें उन्हें ले लेना चाहिए। और रही बात विक्रांत से बचने की, तो मुझे आप पर पूरा का पूरा यकीन है, आप मुझे उसके चंगुल से जरूर बचा लोगे। तारा की बात सुनकर अमन कुछ सोचने लगा था और फिर चुपचाप खड़ा हो गया था, क्योंकि तारा जो कह रही थी सच कह रही थी। एक बार उसके पिताजी उसके पास आ जाएं तो उसके बाद वो तारा को तो विक्रांत से लड़ झगड़कर बचा ही लेगा। ये सोचते हुए अमन भी अब चुप हो गया था। वहीं करिश्मा जी परेशान हो गई थीं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें विक्रांत की शक्तियों का अच्छी तरह से अंदाजा था, क्योंकि विक्रांत के अंदर परीलोक में मूर्छित पड़े हुए राक्षस का अंश था, जिसके अंदर शक्तियाँ बेशुमार थीं। कोई भी देवी देवता उसके सामने टिक नहीं पाता था, और अमन तो उनका बेटा था। भले ही वो अभी जिन महाराज बन गया हो, लेकिन उसमें अभी भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस राक्षस का खात्मा कर सके। यही सोचते हुए कहीं न कहीं करिश्मा जी काफी ज्यादा परेशान हो रही थीं। और फिर जैसे ही विक्रांत ने तारा की बात सुनी तो वो जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, अरे वाह मेरी तारा, फाइनली तुमने मेरी बात मानकर मुझे इस बात का एहसास करा दिया है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ऐसा कहकर विक्रांत खौफनाक हंसी हंसने लगा था। विक्रांत की बात सुनकर तारा ने गिन से उसकी ओर थूक दिया था, लेकिन विक्रांत को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था। जल्दी ही विक्रांत ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, और अचानक मंत्र पढ़ते ही एक बड़े से लाल रंग के घेरे में अमन के पिताजी के साथ साथ राक्षसी हिडिम्बा दिखाई दी थी। जैसे ही करिश्मा जी ने अपने पति को इतने सालों के बाद देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे, और तभी तारा चिल्लाकर बोली थी, विक्रांत पिताजी को छोड़ दो। विक्रांत तारा की ओर देखकर मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे पास मेरे करीब आना होगा। ऐसा कहकर विक्रांत तारा को अपनी ओर बुलाने लगा था। तारा ने एक नज़र अमन की ओर देखा था, और करिश्मा जी की ओर देखते हुए धीरे धीरे वो विक्रांत की ओर बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे तारा विक्रांत की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे अमन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी उससे दूर जा रही हो। तारा को अपने आप से इस तरह से दूर होना अमन के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो ये देख भी नहीं पा रहा था। उसे रह रहकर अब विक्रांत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इतना कि उसके गुस्से की वजह से उसके जिस्म की एक नस दिखाई देने लगी थी।